वर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट मुंशी वाले की जय। आपने कहा कि ऐसी बात कहो जो महात्मा पुरुषों के वचनों के अनुसार हम लोग बन जाएं। हम तो कहें कि और एक पीढ़ी आगे बढ़े, महात्मा से परमात्मा बढ़े हैं तो परमात्मा के वचन के अनुसार ही हो जाएं। जो गीता जो है साक्षात भगवान का वचन है तो अपना जीवन गीतामय हो जाए। गीता है सो भगवान का वचन है, तो गीता में अपन जीवन बन जावे। यानी गीता जो है ये साक्षात भगवान के श्वास हैं, और गीता जो है सो भगवान को हृदय है। गीता जो है इस वास्ते भगवान की बांग में मूर्ति है, तो गीता के अनुसार अपन जीवन बन जावे एक नंबर बात है। अब रही यह बात कि श्रोता और वक्ता, तो श्रोता की शक्ति भी एक स्वाभाविक अद्भुत होती है और वक्ता की भी शक्ति एक अद्भुत होती है। तो जिस वक्ता की शक्ति से थी और वह के प्रभाव से ही दूसरा ने बात धोकर के करना पड़े, ऐसी शक्ति हम देखते हैं अपने में तो अपने नहीं देखते हैं। तो इसलिए तो हमारी तो इस विषय में वो शक्ति नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ऐसे वक्ता हुए हैं और उन्हें की शास्त्रों में कथा हमारे को मिलती है। अध्यात्म विषय में भी और संसारिक लौकिक के विषय में भी उनका प्रभाव ऐसा शास्त्रों में देखा गया है। तुलाधर जो वैश्य है, इसके पास के वहां जाजली ऋषि आया था, ये महाभारत की कथा है। तो जाजली ऋषि क्यों आया था कि जाजली ऋषि एक समुद्र की तलेटी के ऊपर या समुद्र के किनारे पर बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या के समय में पक्षियों ने उसके मस्तक पर घुसा डाल दिया था, और उसको जब ये ज्ञान हो गया कि पक्षी ने घुसा डाल दिया है, तो वे मौन रहे, अचल रहे, ठूठ की माफ हो गए, न हले न चले, टट्टी और पेशाब की तो बात ही कौन कहे, न खाना न पीना न सोना भी नहीं। तो एक प्रकार से वे वृक्ष की जो एक स्थिर यशो रही। पक्षियों ने फिर अंडे दे दिए और वो जो पहले के पक्षी है वे उड़ गए। फिर अंडे में से जो पक्षी पैदा हुए थे उन पक्षियों का जोड़ा बहुत समय तक रहा। रात को वे गौशाले में आ जाते, प्रातः काल चुगो पाने के लिए चले जाते। जैसे पहले जोड़े की नीति रही ऐसे दूसरे जोड़े की यही नीति रही। फिर एक समय के बीच के वहां वे पक्षी उड़ गए और एक महीने तक लौट कर वापिस नहीं आए। तो जाजी ने सोचा कि अब उन्होंने कहीं दूसरी जगह घुसा घाल लिया है, अपना दूसरी जगह तकलीफ कर ली है, तो अब इस बोझ को उठाकर गिर दो। तो उन्होंने अपने सिर का जो बोझा है समझो कि फेंक दिया, उसमें कुछ भी नहीं था, ना कोई अंडे है ना कोई पक्षी है, पक्षियों ने अपना बास भी छोड़ दिया। इसके बाद उनके मन के मां अहंकार आ गया कि संसार के मां मेरे समान भी कोई तपस्या कर सकता है, तो उन्होंने ताल ठुकी और तब आकाश वाणी हुई कि हे जाजरे तुम इतना अभिमान मत कर, तुलाधर वैश्य जिस प्रकार से तपस्या करता है उसकी तपस्या के मुकाबले तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं। तो उसने सोचा कि भी चलो तुलाधर वैश्य के पास, कौन तुलाधर वैश्य है? तो तुलाधर वैश्य से एक पूछता हुआ आया तो वो क्या देखता है कि एक दुकान के ऊपर वो बैठा हुआ क्रय बिक्री करता है, सौदा बेचता है और रस भी बेचता है, लून है, तेल है, चीनी है और घी है और आटा है, खाद्य पदार्थ सब कुछ बेचता है। एक मदरा नहीं बेचता था, लाख नहीं बेचता था और सभी पदार्थ जो है सो खाद्य पदार्थ बेचा करता था। उसने देखा कि क्या बात है, तेरे को आकाशवाणी हुई, कोई भ्रम हो गया, यहाँ तो कोई तपस्या का कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। तो वो इस प्रकार से देखकर वापिस जाने लगा तो वो तुलाधर वही से अपने आसन से उठ करके और हाथ जोड़ कहा महाराज आपको जो समुद्र की तलेटी पर जो आकाशवाणी हुई थी तुलाधर वैश्य के नाम पर वो मैं हूँ। देखो इसको कैसे बता लिया, आपने जो तपस्या की थी उस सब को मैं जानता हूँ। तो बोले अरे बढ़िया, तो रस बेचता है, क्रिय विक्रिय करता है, फिर तेरे को इस प्रकार का ये ज्ञान कैसे हुआ? महाराज मैं सत्य बोलता हूँ और शिव के साथ मैं सम व्यवहार करता हूँ, चाहे कोई बुद्धिमान आ जाए और चाहे कोई मूर्ख आ जाए, चाहे बालक आ जाए, चाहे वृद्ध आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, उनके साथ में मेरा व्यवहार समान भाव से होता है। यही नहीं, सुख और दुख के बीच के मैं सम रहता हूँ, निंदा स्तुति मेरे समान है, मान अपमान समान है। जैसे गीता के मां गुणातीत और भक्तिमान पुरुष के लक्षणों में समता के लक्षण लिखे हैं, ये सब लक्षण अपने में उन्होंने बतलाए कि ये वजह है जिससे मुझको ज्ञान हो जाता है। तो उसका जो क्रिय विक्रिय है वो त्याग पूर्वक था, संसार के कल्याण के लिए था, कोई रुपयों ने लेकर के स्वार्थ बुद्धि ने लेकर नहीं था। फिर कहा कि तू बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है और कार्य जो तुम्हारा सो बहुत ही नीचा है। महाराज एक प्रकार से कार्य की तरफ आप देखते हो तो आजकल ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ के बीच के मां पशु हिंसा करते हैं, तो ये वेदों में नहीं है। तो आप हमारे कार्य की तरफ नजर डाली, आप ब्राह्मणों की तरफ क्यों नहीं देखा? आप जो ब्राह्मण हैं तो आपने उस तरफ ध्यान देना चाहिए था, जो वेदों का नाम लेकर के व्यर्थ हिंसा करते हैं। उन्होंने प्रमाणित कर दिया ये कि वेदों के मां ये हिंसा की बात नहीं है, ये ब्राह्मणों ने एक प्रकार से ये बात चला दी। उसके बाद में वे आकाश में जो उड़ते हुए पक्षी आए, आकाश में जा रहे, बोले जाजरे ये ही पक्षी हैं जो आपके मस्तक में घुसाड़ा खाया था और आप इसको बुलाई आपके मस्तक के माँ अभी आकर के बैठेगी आपके मस्तक पर। उन्होंने संकेत किया बुलाने का, उसी वक्त में पक्षी आ गई, आकर उसके सिर पर बैठ गए। तब जाजी ने कहा कि तुम्हारे वचनों की शक्ति को देख करके, तुम्हारा ये प्रभाव देख करके मेरी तुम्हारे में श्रद्धा होगी कि पक्षी भी तुम्हारी बात माने। तो फिर उन्होंने उपदेश की बात पूछी है जाज जी ने, तब उन्होंने उपदेश दिया है, उनसे उपदेश ग्रहण करके वो जाज जी चला गया। कहने का अभिप्राय यह है कि तुलाधर वृक्ष की ये एक अलौकिक शक्ति थी, एक प्रकार से ये संसारिक प्रभाव है। अध्यात्म विषय का वो प्रभाव उस कोटि का माना जाता है कि जिससे दूसरे का कल्याण हो जावे। उन्होंने अपना प्रभाव तो दिखला दिया कि उसके अंतकरण की बात जान ली, और उसने जो तपस्या की थी भूत की बात भी अपने घर पर बैठा जान ली, आकाशवाणी की बात जान ली, और इस बात को भी जान गए कि यही पक्षी है, और ये ऑर्डर कर दिया कि आप इनको बुलाइए ये आवाई। इतना ऑर्डर करने के साथ उन्होंने संकेत किया और वे आकर के उनके मस्तक पर बैठ गए। ये देख करके उस जाजी का भाव एकदम बदल गया। तो ये मैंने दिखलाई एक उस महापुरुषों की शक्ति, स्वाभाविक शक्ति के, जिस शक्ति के प्रभाव से थी बात धोकर के उनको करना पड़े। और एक क्या, किसी ने भी किसी को साप दे दिया या वरदान दे दिया या आशीर्वाद दे दिया, तो इससे हमारे शास्त्र भरे हुए हैं, उपनिषद समझो कि और पुराण, इतिहास, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि इतिहास और भागवत आदि पुराण, बहुत से उदाहरण इनके वहां मौजूद हैं। तो उनकी वाणी में ये शक्ति थी। जो सत्यवादी होता है उसकी वाणी में भी ये शक्ति आ जाती है, और फिर साथ साथ के वहां भगवत प्राप्त पुरुष उसकी तो फिर बात ही क्या है। तो ऐसे पुरुषों के बीच के वहां शास्त्रों में ये शक्ति देखी गई है, उनकी वाणी में ऐसी शक्ति रहती थी कि वो एक प्रकार से ऐसा काम करती थी बलात्कार का कि जिसको कोई रोक नहीं सकता था। दूसरी शक्ति मैं श्रोता के विषय में आपको कहता हूं, जैसे पांडवों की माता जो कुंती है उसने ये आर्डर दिया कि तुम जो आज भिक्षा लाए हो पांचों भाई उसको उपभोग करो, यानी काम में लाओ। तो भीमसेन ने कहा कि आज की भिक्षा के वहां मैं एक स्त्री को लाए हैं। माँ ने कहा कि तुम स्त्री का नाम तो नहीं कहा, माँ भिक्षा लाए, तो हमारे तो सब पांचों ही समान। तो बहुत मुश्किल की बात हुई कि मैंने जो कह दिया कि तुम पांचों इसको काम में लाओ, तो ये बात अब सत कैसे होगी। हमारे ये वचन तो समझो कि सत होने बहुत ही कठिन है, तो उनको सत करना कुंती के हाथ की बात नहीं, उनको सत करना पांडवों के हाथ की बात। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि माँ आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे और पांचों मिलकर इसके साथ में विवाह करेंगे। तो शास्त्र के विरुद्ध और लोक के विरुद्ध हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष के माँ, ये बात शास्त्र विरुद्ध भी है, लोक विरुद्ध भी है, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने समझो कि माता के वचनों का आदर किया, उनका पालन किया, तो इस प्रकार से थी माता पिता के वचनों का और महात्माओं के वचनों का जहां कहीं किसी ने पालन किया तो वो पालन करने वाले की शक्ति कहो, श्रद्धा कहो, उसका प्रेम कहो, जो कुछ कहो, तो इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं, उसके भी मिलते हैं और इसके भी मिलते हैं। जवाला का पुत्र जो सत्यकाम है, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करके ब्रह्म की प्राप्ति करी। राजा ध्रुव जो है, उन्होंने शिव जी की आज्ञा मान करके के वरदान को मान करके के और उस लड़के को लड़की ही समझा शिखंडी को, और दूसरे राजा की कन्या के साथ में विवाह तक उसका कर दिया। वो लौकिक बात ही, किंतु उसमें उसकी सफलता ही। और आरुणी जो है ध्रुव मुनि का शिष्य, उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उस आज्ञा के पालन के स्वरूप के बीच में गुरु ने वरदान दे दिया, उस वरदान के फल स्वरूप के बीच के मां उसको सारे शास्त्रों का बिना पढ़ी ज्ञान हो गया। तो ये उस महात्मा की जो आज्ञा है उसकी महत्ता हुई। तो शास्त्रों के मां किसी जगह जो समझो कि आज्ञा पालन वाले की महत्ता है, कहीं आज्ञा देने वाले की, ये दोनों बात हम शास्त्रों के मां देखने के लिए सभी प्रकार के उदाहरण हम लोगों को शास्त्र में मिलते हैं, बहुत से उदाहरण मिलते हैं। तो जो बात शास्त्र के मां लिखी है, गीता तो साक्षात भगवान के वचन है और सब शास्त्र है, ये ऋषियों के वचन है, वेद है, ब्रह्मा के वचन है, सभी महापुरुषों के वचन है। ब्रह्मा जी भी महापुरुष और जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, ज्ञानी महात्मा है, वे भी महापुरुष है, और भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं ही। तो उनकी आज्ञा का हम लोगों को पालन करना चाहिए, अपने को उसी प्रकार से चलना चाहिए। हमारी तो ऐसी शक्ति होती तो आज तक समझो कि सैकड़े हजारों आदमी तैयार हो जाते और भगवत प्राप्त पुरुषों के तुल्य हो जाते या भगवान को प्राप्ति हो जाती। हम तो एक कहते हैं सो प्रार्थना के रूप में कहते हैं, विनय के रूप में कहते हैं, कुछ उपदेश आदेश के रूप में नहीं कहते, गुरु शिष्य के भाव से नहीं कहते, स्वामी सेवक के भाव से नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं मित्र भाव से ही कहते हैं। इस मित्र भाव से कहने का भी एक रहस्य है। एक तो यह रहस्य है कि हम स्वामी के रूप में या गुरु के रूप में क्यों नहीं कहते। एक तो हम अपना अधिकार नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ण है आश्रम है, आश्रम के बीच में गृहस्थाश्रम और वर्ण के वैश्य वर्ण, तो हमारा कोई अधिकार नहीं गुरु बनने का या समझो कि शिष्य बना करके उपदेश देने का। दूसरी बात यह है हमारे में वो अलौकिक शक्ति नहीं जैसे वेदव्यास जी आदि में थी, उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी जिससे उनको तीनों काल का ज्ञान होता रहता, इंद्रियों का भी और मन के द्वारा भी, उनकी इंद्रियां और मन से भी दिव्य हो गए, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी वही दिव्य दृष्टि वेदव्यास जी ने संजय को दे दी। वेदव्यास जी के खुद के पास थी, इसमें तो कहना क्या है, ये बात उसकी अंतर्गत आ जाती है क्योंकि दूसरों को दे सकते हैं। और भी उनके बीच के वहां लौकिक और अलौकिक सभी प्रकार की शक्तियां थी, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं था। जो करु पांडवों की सेना थारा क्षोणी जिसको 15 वर्ष से अधिक हो गए थे, उनको उसी रूप में समझो कि आह्वान करके बुला करके सबसे भेंट करा दी, तो ये कोई साधारण शक्ति की बात नहीं। अद्भुत शक्ति थी उनकी, तो हम भी उस प्रकार अधिकारी पुरुष होते और भगवान हमको शक्ति दे करके संसार के कल्याण के लिए भेजते, तो हम भी आप लोगों को अपनी शक्ति से अपने लाभ पहुंचा सकते। अब तो ये बात है कि एक प्रकार से प्रार्थना के रूप में या जो हमारे से छोटे हैं वह समझ लो कि सम्मति के रूप में, मित्रता के रूप में बड़ों के लिए प्रार्थना है और बराबर वालों के लिए छोटों के लिए हमारी राय है, तो उस राय को मान करके के सम्मति को मान करके मंत्रणा को मान करके यदि कोई काम लेवे तो हम तो ये समझते हैं उनकी हम भारी है, उनकी हमारे ऊपर दया है। अब रहस्य तो अभी और बतलाना है, पर यह है कि यदि हम अधिकारी होते और सामर्थ्यवान होते और उस अधिकार के अनुसार हम गुरु शिष्य का संबंध करके लोगों को शिक्षा या आदेश देते, तो ये तो नहीं कहते कि भी एक प्रकार से उसका क्या नतीजा होता कौन कह सकता है, किंतु ये बात तो है ही कि जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे तो उसका पतन हो जाता है। तो आपका हमारा मित्रता का नाता होने के कारण से हमारी जो मंत्रणा हमारी जो राह है समृति है, इसको आप काम में कोई नहीं लाओ तो पाप के भागी नहीं होती। ये बात तो हम आपको तेजी के साथ जोर के साथ कह सकते हैं कि आपको इसमें पाप नहीं लगता। और हम यदि गुरु होते और वो संबंध आपके साथ में जोड़ते और आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते तो आपका पतन होता, और आज्ञा के पालन में समझो कि किसी आपको भय भी होता और संभव है कि वो हमारी शक्ति होती तो हमारी वो शक्ति बलात्कार से आप लोगों से साथ करवा भी लेती। जैसी राजा की आज्ञा बलवान होती है, हुक्म होता है राजा का और उसके अनुसार करना ही पड़ता है, उसके वहां फेरबदल नहीं होता। तो ये तो उस वक्ता की शक्ति पर निर्भर है कि कैसा वक्ता और कैसी शक्ति हो, किंतु ये बात साथ साथ के बीच के वहां जैसे उसके साथ के वहां लाभ की बात है, ऐसे उसके साथ में अपने खतरे की बात भी है, वो बात न मानने से खतरे की बात भी है। और हमारी बात आप लोग कोई काम में नहीं लाओ तो एक प्रकार से लाभ से वंचित रहे, कोई आपको नया कोई नुकसान नहीं लगा, कोई आपको पाप नहीं लगा, आपको हम बात नहीं करते कि ये बात आपको काम में लानी पड़ेगी, आपकी मर्जी है, आप ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते हैं, किंतु लाने में लाभ है और न लाने में कोई नुकसान नहीं। ये इसको यदि नुकसान मानो तो जरूर है कि लाभ से वंचित रहना जो है ये नुकसान तो जरूर है। आपको कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए और आप सत्य नहीं बोलोगे तो सत्य बोलने से होने वाला लाभ है उसे तो वंचित ही रहोगी। आपको कहा जाए कि एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य के पालन से जो लाभ होता है वो आपको कैसे मिलेगा। तो जो शास्त्र की बात है उसके पालन से हमको लाभ प्रत्यक्ष होता ही है, तो इसलिए हम लोगों को शास्त्र का भी महाशास्त्र गीता है, गीता से गीता कर्तव्य और किमने शास्त्र विश्रेयी या स्वयं पदो नावश्य मुख पदमात विनिश्चिता। गीता को अच्छी प्रकार से करना चाहिए, उसका गायन भी अच्छी प्रकार से करना चाहिए और उसका अध्ययन भी अच्छी प्रकार से करना चाहिए। और फिर और शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, इसमें शास्त्रों की अवहेलना नहीं की गई है, शास्त्रों को तो महत्ता ही दी गई है, पर उनसे भी बढ़कर के गीता को अधिक महत्ता दी गई। तो इससे ये बात धुनी निकलती है कि शास्त्रों की आवश्यकता तो है किंतु गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को अच्छी प्रकार से कर ले तो फिर शास्त्र की आवश्यकता नहीं। तो शास्त्र निर्थक तो नहीं है, शास्त्र है तो दामी चीज, पर गीता का जब आप अभ्यास कर लो तो आत्मा के उद्धार के लिए और विशेष आवश्यकता नहीं। क्यों कि यह गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकली है, पद्मनाभ जिसकी नाभि के बीच के वहां कमल है, ऐसा जो भगवान विष्णु जिसके नाभि से कमल निकला है, तो पद्मनाभ और मुख कमल तो दोनों के बीच के मैं कमल शब्द है कि गीता जो है सो मुख कमल से निकली और सारे शास्त्र जो है नाभि कमल से निकले। सारे शास्त्र कैसे निकले कि नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से वेदों की उत्पत्ति ने वेद से प्रकट हुई और वेदों से इतिहास पुराण शास्त्र दर्शन शास्त्र उपनिषद श्रुतियां ये सब जितने जो शास्त्र हैं इनका विस्तार हुआ वेदों से, वेदों के आधार पर। तो इसके बीच के वहां एक तो स्वयं शब्द पड़ा है या स्वयं पद्मनाभ अवश्य या गीता स्वयं पद्मनाभ के मुख से, तो और शास्त्र भगवान के स्वयं नाभि से नहीं निकले, मुख से तो निकले ही नहीं किंतु नाभि से भी नहीं निकले।